ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम भगवद गीता यथारूप का अध्याय 9वां, जो परम दुख ज्ञान के बारे में भगवान श्रद्धालु की ऊपर, जिनके मन में द्वेष नहीं है इनको ही देने के लिए सूचना करते हैं। अर्जुन को कहकर कि हे अर्जुन, तू मेरा द्वेषी नहीं है, इसलिए मैं तुझे अति गुह्य ज्ञान कहता हूं। जिस ज्ञान प्राप्त करके तो प्रायोगिक रूप से भी जीवन में उतार करके अपने आप को सारे भौतिक कलमशों से दूर करेगा। ये ज्ञान भगवान सीधा कह रहे हैं, उसके लिए कोई स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं, न तो स्कूल वाले सिखाएंगे। वो लोग जानते नहीं, इसलिए सिखाने के लिए वो लायक भी नहीं। तो फिर भी ये ज्ञान की उपेक्षा करते रहते हैं। लेकिन यहां सीधा साधा इस श्लोक में ये सारे भौतिक कर्मों से छूटने के लिए जो उपाय बता रहे हैं, वो उपाय उसके पसंद नहीं। फिर भी भगवान कहते हैं कि इससे क्या लाभ है, वो भी समझने के लिए तैयार है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा द्वेष बना रहता है जिसके द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं। लेकिन भगवान सारे जगत के कल्याण के लिए और उसमें भी कलयुग में खास आसान तरीके से जो सत्य हकीकत है वो बताने के लिए हमें समझा रहे हैं। तो आज के श्लोक में बहुत सारे भक्त लोग तो जानते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, या दान देते हो, या जो भी तपस्या करते हो, तो मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं, इस प्रकार यह प्रत्येक का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढालें कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को भूल न सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहां पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति तो कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं, अतः कृष्ण की यहां संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यहां अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं कि यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग से कृष्ण भावनामृत के आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यावहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ज्ञानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के छठे अध्याय में की गई है। और उसके बाद भगवान समझाते हैं, शुभा शुभ ही एवं फल ही एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्त आत्मा मुक्त मामुपेक्षति। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। इस श्लोक में तो कर्म करने वाले भी सन्यासी बन सकते हैं, कर्म करते ही रहे लेकिन भगवान की प्रीति के लिए यदि करे तो वो भी सन्यासी कहलाता है, चाहे गृहस्थी भी क्यों ना। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता देते हैं कि गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावना में रह कर कर्म करने को युक्त कहते हैं, जुड़ा हुआ पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के दूसरे अध्याय के 255 के श्लोक में बताया है कि अनासक्तस्य विषयान यथा अर्हं उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ होता है और कर्ता जो जो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, क्यों क्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति से तदाकार नहीं होता अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि मामुपैष्यसि, वह मेरे पास आता है अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ एक स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त जीवन पर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहां से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती वह वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है, अतः वह जो कुछ करता है वह भगवान के लाभ के लिए करता है, वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है, वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्य पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्य के लिए वेद में वर्णित जो कर्म पूर्णतया यानी कि वो संपन्न करने का अनिवार्य बताया जाता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों पर विशेष ध्यान प्रतीत करता है जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञानिया बुद्धि है। ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 23 अध्याय के 39वां श्लोक है। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाना निश्चित है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन दोनों श्लोक कृष्ण भावनामृत में हम क्या कर सकेंगे और कौन से फल की प्राप्ति होगी उसका पूरी तरह वर्णन करता है। भगवान यदि कहते हैं कि यत करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषं मदर्पणम्, यानी कि हम जो कुछ करते हैं खाते हैं अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं और जिस प्रकार की दूसरों के लाभार्थी भी हम कोशिश करते रहे और उनको अर्पण करके करने की बात कर रहे हैं, यानी कि हम जो कुछ करते हैं जो कुछ खाते हैं उनको अर्पण किए बिना यदि हम करते रहते हैं तो इसका मतलब ये है हम इनका सुनते नहीं। जो सुनते हैं फिर भी नहीं करते हैं तो वो समझते भी नहीं। हमने आज बताया था कि इसके पीछे बहुत गहरी ईर्ष्या भगवान के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन करने को मना थोड़े करते हैं। करने का हेतु अपना निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए भी करें तो भवबंधन में पड़ते हैं। भवबंधन वाला बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसता रहता है, उसे वो छूट नहीं पाते। भौतिक कामनाएं के बजाय यानी इंद्रिय तृप्ति का लक्ष्य न दे उसके बजाय जब भगवान का लक्ष्य बनाकर यदि करता रहता है तो अनायास के कुछ न कुछ भगवान के साथ जुड़ावा तो बन जाता है। भगवान के साथ जुड़ावा करने का ही तो महत्व योग का है, बिना जुड़ावा भगवत प्राप्ति संभव है ही नहीं, कभी नहीं फलित हो। लेकिन भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। वास्तविकता पहले हमें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूटने की होती है और अनायास ही हर एक मनुष्य इन चार चक्करों से छूटने का प्रयत्न करता ही रहता है अनजाने में भी, क्योंकि किसी को फिर से ये भौतिक दुनिया की रगड़ में फंसने की इच्छा नहीं। आप कोई हाथ ऊंचा कर सकते हैं कि फिर से कलयुग में आकर हम और मजा करेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति है? इस बार नहीं तो भगवान अगली बार तो हमें देंगे ही सही, अगली बार क्या देंगे उसका कोई भरोसा है? सिर्फ भावनाओं से हमारा पेट नहीं भरता, लेकिन भगवान की तरफदारी वाली भावना यदि करें तो भगवान का पेट अवश्य भरता है। भगवान भाव के भूखे हैं, तो हमारी भावना बेर भाव वाली हो तो उसे भगवान कैसे रागी होंगे? न तो भगवान का कोई भी प्रतिनिधि रागी होगा, चाहे भौतिक संसार के संचालक देवता भी क्यों ना हो, कोई रागी नहीं है। इनको खुश करने के लिए भगवत प्राप्ति में जो भक्ति का साधन है, तो भक्ति करने वाले पर कोई भी नाराज नहीं होता, सिर्फ ईर्ष्या वाले ही नाराज हो सकते हैं। हर एक को अपना जीवन होता है, यदि कोई बच्चा भक्ति में आगे बढ़ता है तो मां बाप को चिंता हो जाती है। अब चिंता का सवाल है क्या? यदि माता पिता छूट नहीं पाते भौतिक संसार में, उनकी समझ नहीं है, लेकिन ये अनायास ही कोई ऐसे भक्ति की अज्ञात सुकृति द्वारा यदि बच्चा भक्ति में जुट जाता है, अज्ञात सुकृति, इनको कोई जबरदस्ती से कोई खींच नहीं लाता, न तो जबरदस्ती से कोई गुलामगिरी भी स्वीकार। भक्ति वस्तु वॉलंटरी है, उस पर जबरदस्ती नहीं हो सकती, भक्ति को स्वतंत्र रखिए। हम भक्ति के लिए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं, वो स्वतंत्रता भगवान की दृष्टि से दुरुपयोग नहीं है। चाहे अनजान व्यक्ति, जैसे कहीं माता पिता घबराते हैं कि ये कहां अभी से भक्ति करने लगा, पढ़ाई लिखाई पेट का तो कोई उसका साधन तो बना नहीं पाता, ये घर की विरासत ऐसे ही बिना हमारी इच्छा पूर्ण करे वो कैसे पा सकता है? लेकिन सबके पास वास्तविक विरासत तो भक्ति की होती है, वो हमेशा बनी रहती है, उसमें घाटा नहीं। लेकिन भौतिक दुनिया में भौतिक अपेक्षाएं रखकर समाज ऐसे निर्दोष अपने ओर से भक्ति में विकास करने की भावना वाला कोई भी स्कृति के कारण के अनुसार यदि भक्ति करने लगता है तो हमेशा उसकी सराहना करनी चाहिए। भगवान करते हैं, भक्त लोग करते हैं, अभक्त नहीं। अभक्त कौन होता है? जो भगवान से ईर्ष्या करता है तो भक्तों से भी ईर्ष्या करेगा, चाहे वो अपने परिवार में ही क्यों ना पेड़ बना हुआ। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद पर ईर्ष्या की, कैकेयी ने राम पर ईर्ष्या की, अपने बेटे का भी सुना है। भरत शत्रुघ्न ने माँ का सुना नहीं, क्योंकि वो माँ उनकी इच्छा जानते थे। वैसे देखो तो प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, लेकिन ये त्याग अंतरात्मा से वैराग्य के रूप में होता है। भरत शत्रुघ्न ने माता का अपमान नहीं किया है, इतनी दुष्ट बुद्धि वाली कह के ही हुई फिर भी, लेकिन उसका साथ नहीं दिया, उसका संग नहीं किया। ऋषि मुनियों की पत्नी ने अपने बर्ताव को छोड़ के भगवान की सेवा में लग गई, उसने उसका क्या गया, कुछ गवाया नहीं, बल्कि भगवान की कृपा प्राप्त हो। जो ये ऋषियां यज्ञ करके वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक बने रहे और इनका दम घुट गया, उनको प्राप्त हुए ही। जब ऋषि पत्नियां भगवान को कृष्ण बलराम और सारे गोपालकों को इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भोजन लेकर गई, अवश्य भगवान ने उनसे चार चार पदार्थ, कौन से पदार्थ होते हैं जो हमारे उद्देश्य होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार चार साथ में भगवान ने दे दिए। और ब्रज वनिता भगवान, ये ब्रज की गोपियां सब कोई का त्याग, त्याग करना यानी कि इनको ठुकरा कर चली गई ऐसा नहीं, ये गोपियां वही की वही रही, तो फिर भी भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित, किसी का सुना नहीं। तो इसी तरह भक्त सबसे ऊंची स्थिति पर होता है, क्योंकि वो भगवान को समर्पित है। आसानी से बिना ईर्ष्या यदि भगवान कहते हैं, उसी तरह यदि हम जो कुछ करते हैं उनको समर्पित करके उनकी भावना से हम अपने इंद्रिय तृप्ति के अलावा जीवन का ये लक्ष्य जो है कि आत्मा की पहचान करना, वो भगवान जैसे समझाते हैं उसी तरह और उसके मूल कर्तव्य में हमें स्थित रहना, इसलिए कर्म करने का आह्वान करते हैं। उसी तरह खाना यानी कि पोषण करना, पोषण को भी भगवान के संबंध में करना। हम तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से जो आया खा लिया, जो पशु खाते हैं वो भी हम खाते हैं क्योंकि पशु को भी खाते हैं। हर एक देश में ऐसी विचित्र खाने की आदतें हैं, ताजुब करोगे, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे अर्पित करो, किसकी ताकत है तो भगवान को अर्पित करके तो मांस मच्छी भी खा सके। भगवान जो सूचना देते हैं तो हमें कुछ इंद्रिय तृप्ति से भी परे कुछ बहुत महत्व का फायदा हो, इसलिए कहते हैं। तो फायदा क्या है, खाना तो पड़ेगा ही, पर लेकिन भगवान जैसे कहते हैं उसी तरह पहले उसको अर्पित करते ये भी खाएं तो काफी फर्क पड़ेगा। वो हर एक व्यक्ति उसका अनुभव कर सकता है, लेकिन जो मन से ही कहेगा कि ये तो सब बकवास है, वो खाते तो है ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, तो कैसे खाते हैं वो जानने की भी तो कोशिश करनी चाहिए। उनका ढंग अलग होता है, हम दाहिने हाथ से खाते, कोई बायां हाथ से खाता है, लेकिन खाता तो है ना। कोई हाथों से मुंह में डालकर खाता है, कोई आंखों से देखकर ही खाने को देखकर तृप्त हो जाता है। जो हमेशा तृप्त है इनको और बताए तो वो क्या है, देखकर खुश होगा कि हाँ तो खा लिया समझो, लेकिन देखने देखने में भी तो कला होती है। कोई आंख मिच कर भी देख सकता है, कोई खुली आंख से भी वास्तविकता नहीं पहचानता। तो ये भौतिक कारणों या अपने जो निजी सामान्य बुद्धि के कारणों द्वारा हम भगवान ये क्यों कहते हैं वो पहचान नहीं पाते। और जब भक्त लोग करते हैं भगवान का ये मानकर, समझदारी भी आती है और दूसरों को सिखाने के लिए उनके पास पर्याप्त ज्ञान भी आता है और उनका अनुभव सुसुखम कर्तुम अव्ययम् कहलाता है, उसमें दुख नहीं। ईर्ष्या को हमेशा दुखी होता है, जब भगवान से ही ईर्ष्या नहीं रखते हैं तो दुख काहे का। कहने का मतलब है कि जो वास्तविक फायदा है अव्ययम्, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है, ये वास्तविकता जीव की विरासत है, उसके निजी लाभ के लिए। ये लाभ बहुत गहरा लाभ कहलाता है। व्यक्ति लोग सिर्फ भौतिक शुद्धि के लिए या इच्छा की पूर्ति के लिए त्याग की भावना भी करते हैं, दान की भावना भी करते हैं और तपश्चर्या की भी भावना करते हैं। सभी देवताओं के लिए व्रत तप इत्यादि चालू ही रहता है धार्मिक वृत्तियों में, लेकिन भगवान यहां कहते हैं कि वो भी मेरे लिए करो। यानी कि सोमवार करना चाहती है तो शिव जी के लिए नहीं, मुझे अर्पित करके चलो। तो कहेंगे इनको करने की क्या आवश्यकता है, भजना है तो भगवान को ही भजन, क्योंकि उससे जितना लाभ है वो लाभ परमानेंट बताया गया है। जबकि देवताओं के पीछे हम इंद्रिय तृप्ति के लिए जो लाभ मानते हैं तो अल्प कहा गया, अंतवंत फलम तेषाम तद भवत्यम अल्प मेधसाम देवान देव ये जो यहां की मध्याजिनो की मान। अंतवंत फलम काम चला भव के लिए हमें जीवन जीने की क्या आवश्यकता है, लेकिन मुक्ति का फल काम चलाओ थोड़ा हो। तो ये लाभों की गिनती इस हेतु के लिए करते हैं जो दूसरे श्लोक में बताया गया है कि शुभा शुभ ही फल ही एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त मामुपेशसी। कर्म शुभ परिणाम भी लाते हैं और अशुभ परिणाम भी लाते हैं, लेकिन ये परिणाम या फल भगवान की प्रीति के लिए जब कर्म करते हैं तो फल की अपेक्षा नहीं होती। भक्ति में फलयुक्त भक्ति करना काफी साहस पत्थे पर उठाना ऐसा बताया, ये फल बंधन करता पड़ेगा। भगवान अवश्य आपकी इच्छा तो पूरी करेंगे, लेकिन बंधन में छूटने के लिए उनका कहां सुनना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि तू फल के लिए यदि कर्म करता है तो बंधन अवश्य तुझे पड़ेगा। तो बंधन से मुक्त होना चाहता है तो वो फल मुझे अर्पित कर, यानी कि हम यदि शुभ कर्म करें अशुभ कर्म करें तो इसमें भगवान जैसे कहते हैं इसे करने में हमें घाटा कहा है, कुछ नहीं। यदि घाटा हो तो ईर्ष्या का घाटा बन जाएगा, वो तो बहुत अवकाशप्रद है कि ये सुख वास्तविक सुख का अनुभव कराने वाला है। ईर्ष्या को हटाना, इसमें कोई बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान से ईर्ष्या हटती है तो सब व्यक्तियों के साथ ईर्ष्या हट जाएगी, लेकिन यदि भगवान के साथ ईर्ष्या चालू है तो एक एक करके आप सबकी ईर्ष्या हटाने में जन्म जन्मांतर निकल जाए फिर भी आपकी सिद्धि नहीं आएगी। कर्म बंधन से छूटने के लिए या इसका दूसरा अर्थ है मुक्ति पाने के लिए भगवान जैसे बताते हैं ऐसे समर्पित होकर करना भक्ति कहलाती है। और संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास यानी सत के लिए जुड़ा हुआ करना, न्यास करना, परम सत्य भगवान रजू कर रहे हैं, परम सत्य स्वयं भगवान है और इनका अंश भी सत्य होता है। तो हम अपनी जो पूर्ण सत्यता के साथ जीवन जीने का भगवान मौका देते हैं। जब इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जीते हैं तो हम सत्य से हट जाते हैं। ये सारी दुनिया सारा संसार असत कहलाता है, असत में भगवत प्राप्ति नहीं। सत्संग जहां परम सत्य रजू करते हैं वैसा संग ही भगवत प्राप्ति कराती है, अपनी मुक्ति कराती है। संसार की दृष्टि से संसार के प्रलोभन में हम यदि खींचे जाएं तो हमें क्या लाभ, कोई लाभ नहीं बल्कि गंवाना ही होता, समय की बर्बादी होती है, सर्वप्रथम शक्ति की बर्बादी होती है, दूसरा और भ्रमणा वाला हमें परिणाम मिलता है जो थोड़ी देर रहता है और हमारे हाथ से छूट जाता है। सारा संसार इसी तरह अपने हाथों से छूट जाता है और हम लाचार बनकर जन्म मृत्यु के चक्कर में प्रकृति के नियम कड़े नियम में हम फंस जाते हैं। हमारी स्वतंत्रता कहां है जब लाचार ही रहे। तो इसीलिए भगवान इतना आसान तरीका बताते हैं कि ये संन्यास वास्तविक क्या चीज है। सत के लिए न्यास करना, जुड़ावा करना, परम सत्य भगवान है उसके साथ जुड़ावा करने के लिए यत करोषि यदश्नासी यज्जो होषि ददासी यत यत तपस्यसी, ये सारे पांच कर्तव्य दिए गए हैं। तो उसे ना समझ कब तक रहे। भक्त इसी तरह धीरे धीरे अपनी सारी भावनाओं को, सारे कर्तव्य को, सारी इच्छाओं को भगवान के साथ जुड़ाने का प्रयत्न करता है, वो भक्ति।
और इसी तरह युक्त जुड़ावा स्थापित करके वो मुक्त बनता है, संसार से छूटने का आसान तरीका जीते जी ही ये भौतिक शरीर को भगवान के साथ इनकी इच्छा के अनुसार जो कहा गया इस तरह पालन करने में जुड़ावा कर सकते हैं तो अवश्य मुक्त हो जाते। मुक्त होना यानी कि भौतिकता से मुक्त होना, लेकिन भौतिकता तो आत्मा पर चिपकी है, तो ये चिपका हुआ भी लगा दो भगवान की सेवा में। यूं देखे तो शरीर हमारा है ही कहां, हम समझते हैं कि हमारा शरीर, लेकिन उनको अज्ञानता से कह देते लेकिन ये हमारा नहीं है, ये शरीर हमें छोड़ के जाएगा, हम छुटना नहीं चाहते इस शरीर से, हम समझ रहे हैं कि हम बने रहे, फिर भी ये शरीर छोड़ के जाएगा और हम वैसे के वैसे नंगे रह जाएंगे। लेकिन ये शरीर देह जो है उसे विदेही बनाना है, यानी कि देहात्म भान से मुक्त होना है, ये सही मुक्ति है। मुक्ति यानी कि ये शरीर छोड़ना मुक्ति नहीं है, सूक्ष्म शरीर छोड़ना कठिन है इस भौतिक शरीर को छोड़कर, तो इसीलिए मुक्त होने की कला यत्करोषि यदश्नासि तत्करोषो मदर्पण वहां से तो चालू की जाती है। भगवान की सेवा में हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी भावना नहीं है जिसे भगवान स्पर्श नहीं करते, कहते हैं जो कुछ कर बाकी क्या रहा। ये एक ही पहले शब्द में यद करोशी यानी कि बाकी का तो कर्तव्य ही है, जो कुछ कर कोई अपवाद है, कुछ अपवाद नहीं। भगवान कहते हैं खाने में भी अपवाद नहीं, लेकिन कब तक गलत चीज खाते रहेंगे, कदर्य भक्षण करे नाना योनि फिरे, कदर्य भक्षण करे तार जन्म अधपते जाए। ये सारी ईर्ष्या की भावना भगवान को छोड़कर हमें भोग भोगने की इच्छा जब होती है तब हमारी बुरी दशा होती है, वो कर्म बंधन कर्म बंधन में फंसाने वाले, भव सागर से छुटकारा नहीं। तो इसी तरह जब ये मुक्त आत्मा मामोपेक्ष से मेरी पास आता, जब हमें हम कहां जाएंगे मुक्त होने के बाद क्या करेंगे उसकी भी फिक्र नहीं करने देते थे भगवान, कि तू मेरी पास आए, तो क्या करना चाहिए। यही अध्याय में उपसंहार में भगवान कह देते हैं मन मना भव मेरे मन वाला हो, मन भक्त मेरा भक्त बन, मध्याजी मुझे तू पूजा कर, माम नमस्कार मुझे ही नमस्कार कर, मामेव सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि मे, मैं तुझे ये परम सत्य कहता हूं क्योंकि तू मेरा प्रिय। भगवान किसी के साथ द्वेष नहीं करते, वैसे जो उनको समझते नहीं, इनका कहा नहीं करते, इशारों से भी यूं नहीं कहते हैं कि तू मेरा प्रिय नहीं, पर फिर भी वो पक्षपात नहीं करते हैं। इसीलिए न दृष्टि न प्रियोसी ने, पर लेकिन ये भजंती तो माम भक्त्या, पक्षपात का भक्तों पर ही करेंगे। और ऐसा पक्षपात है कि नम भक्त प्रणश्यति भी कह देंगे, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो कितनी गारंटी मिलती है, तो हमें सारा जीवन अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे अभक्त के रूप में गुजार देना पशुता नहीं तो क्या है। भगवान से कुछ न कुछ ऐसा विरोध जताने से क्या फायदा है। ये ईर्ष्यालु स्वभाव सारी दुनिया में इतना व्याप्त है, लेकिन अनायास ही भगवान इनका कहा करने वाले भक्तों को अलग सा ही व्यवहार में डाल देते हैं। ये भक्त लोग श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेदों में बताए हुए चार वर्ण और चार आश्रम के अनुसार जो सूचित कर्म है, तो विशुद्ध भक्ति में वो तरकार नहीं करते, क्योंकि जो कुछ करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं, तो उसको सूचित कर्म करने की आवश्यकता क्या। तो कभी कभी अनादर जैसा करते हैं, लेकिन उसका अनादर नहीं समझना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चार वर्ण और चार आश्रमों में जो जो कर्म है उसकी संज्ञा प्रभुपाद जी ने काफी समझाई है। भगवान स्वयं कहते हैं, इस पर वो विस्तृत रूप से हमें बताते हैं, लेकिन उसके पीछे जो रहस्य है वो भी खुला करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णाश्रम धर्म पालन करने के पीछे क्या मतलब है। धर्म स्वनुतिष्ठाम, हम जो जो स्थिति में हैं चार वर्णों चार आश्रम, तो उसमें स्थिर रहकर हम जो जो पालन करते हैं वो यदि भगवान के प्रति के लिए न हो तो व्यर्थ श्रम है। श्रम की विजय नहीं होती। यदि कोई कहता है, हमने तो ये मायावादियों का सुना कि श्रम एव ही जयते, आप श्रम परिश्रम करो तो ही आपको कुछ मिलेगा, लेकिन श्रम की विजय नहीं है। यदि कोई समझे कि श्रम की विजय हो तो पेट पर ही है, थोड़ा खाना मिलेगा और तो क्या मिलेगा। वैसे तो गधा भी श्रम करता है, लेकिन क्या इसके श्रम की कोई सराहना थोड़ा करता है। जो कुछ करते हैं इसमें यदि भगवान की प्रीति प्राप्त न कर सकते हैं तो वो करा हुआ श्रम कहलाता है, उसे मुक्त नहीं हो सकता। अतः कौमदी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण। मनुष्य की किसी भी अवस्था में संसिद्धि हो तो भगवान का संतोष होगा। ये समग्र सिद्धियों को संसिद्धि कहते हैं। तो अवश्य कितनी सरल बात है, भगवान कहते कि जो कुछ करे तो मुझे अर्पण कर, जो कुछ खा मुझे अर्पण कर, तो उसके लिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। द्वेषी बहुत चिंता करता है, तो हमारी सारी जीवन स्टाइल बदलेगा,
ये भक्त लोग आते हैं कहते हैं कि हाँ गलत खाते बर्तन अलग करो, हाँ खाने के पकाने के लिए नए बर्तन लाने पड़ते हैं, भगवान के लिए। अरे भगवान नहीं, जो भगवान खाते वही खाओ, तो बर्तन बदलने की आवश्यकता कहाँ है। जो भगवान को अर्पित किया जाता है भगवान की अनुकूलता वाली भक्ति करो, फर्क क्या पड़ता है। तो कहने का मतलब है, इतनी सरल समझ होने के बावजूद भी ईर्ष्या जब तक बनी रहती है तो काम आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए यदि कोई ईर्ष्यालु है तो उसको थोड़ा पॉकिंग करना चाहिए, थोड़ा छूते रहना चाहिए। जब भक्त लोग जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जोर से जब बोलते हैं ना, तो ईर्ष्यालु लोगों के उसमें शरीर में खुजता है, कान में खुजता है। अरे इतने चिल्लाने की क्या आवश्यकता है, आपने घर में करार करो। लेकिन ये परेशानी बहुत मीठी परेशानी है और भक्तों की जिम्मेदारी है कि कुछ न कुछ ये घोष परों करते रहें और जगाते रहें। इस कलयुग में टू डिस्टर्ब द एनवियस इज द ड्यूटी ऑफ अ डिवोटी। बहुत सारी ऐसी गहरी ईर्ष्याएं छुपी रहती हैं, भक्त लोग ईर्ष्या से मुक्त होते हैं। इसीलिए इनको भगवान के नाम का रस जो अमृतमय हो, हाँ, ये सब प्राप्त होता है, अनायास ही प्राप्त होता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम की जब गारंटी मिलती है, ऐसी गारंटी तो कोई आपको प्रोडक्ट में भी नहीं मिलेगी। हम 5 दिन से परेशान हैं ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में। धनंजय से पूछो कि क्या क्या हरकतें आ रही है, हम खुश नहीं है। हम कंप्यूटर भूल गए थे तो 1.5 महीना तक वो उसमें पड़ा रहा, कस्टम ऐसी ड्यूटी लगाई ऐसी ड्यूटी लगाई। अरे भाई पुराना मेरा मैं भूल गया था, लाया हूं फिर नहीं, हम तो लेंगे ही लेंगे। बाद में हमें खुद जाना पड़ा कि भैया साधु तो वो लोग समझ गए हैं कि यहाँ कोई माल मिलने वाला नहीं, तो थोड़ा सा दे दिया। लेकिन 1.5 महीना परेशान किया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में। हम कई मोबाइल फोन लाए, आईफोन ले आए, तो वो भी उसमें भी धक्का मिला, क्योंकि इंडिया में तो चलता ही नहीं। अरे भाई आज भी परेशान हुए, कोई नया गैजेट लाए के हमें ईमेल निकालनी है, क्या है क्या नहीं, तो वो भी नहीं चला है। कितने परेशान हुए, संतोष नहीं मिलता, संतोष नहीं मिलता। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वारंटी नहीं देते हैं, लेकिन भगवान की गारंटी मुफ्त है, बिना खोन ऐसी आप ही खाओगे लेकिन भगवान को भोग लगाओ, नहीं तो पाप खाओगे और क्या खाओगे। इंद्रिय तृप्ति पाप तृप्ति कहलाती है। जब ये पापी जीवन से हमें निकलना है तो भगवान का सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्य पाप कहां है। ये पाप अज्ञानता से होते रहते हैं, तो जब भगवान समझाते ज्ञान देते हैं तो पाने के लिए हम ईर्ष्या बताते हैं उनके सामने, कोई ये कौन है, वेद में तो बहुत और कुछ कहा है,
जानते कुछ नहीं।
तब भगवान का सुनना, भगवान कहते अनुसार करना, और उसके फल की प्रतीति करना, यही तो जीवन का लक्ष्य होता है, जिससे अनायास ही बंशागत छूट जाता है। और जाएंगे कहां उसकी गारंटी भी है कि स्वर्ग लोक नहीं, यहां एक बार जाकर वापस आने की आवश्यकता नहीं है। वो धाम भगवान का श्री गोलोक वृंदावन धाम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछे। संचारी को प्रश्न है? अभी भगवान का प्रसाद खाओगे तो सारे प्रश्न वैसे ही चले जाए। ब्रह्म महाप्रसाद गोविंदे।